काकोरी के वीरों से परिचय। 9 अगस्त 1925 को शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला और उनके अन्य क्रांतिकारी साथियों ने क्रांतिकारी पार्टी के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए लखनऊ के करीब काकोरी के पास रेलगाड़ी रोक सरकारी खजाना लूटा। इसके बाद सिवाय शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के बाकी सभी क्रांतिकारी पकड़े गए। भगत सिंह तब कानपुर निवास के समय हिंदुस्तान रिपब्लिक पार्टी में भर्ती हो चुके थे। उनके अपने शब्दों में जो उस समय भगत सिंह ने कहा था, फिर सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाने का समय आया। भगत सिंह ने रोमांटिक क्रांतिकारी से एक बड़ा मोड़ काटा और उनके ही शब्दों में, मैंने अध्ययन शुरू कर दिया। विद्रोही नाम से मई 1927 में भगत सिंह ने एक लेख काकोरी के वीरों से परिचय शीर्षक से पंजाबी में छपवाया। उस लेख के छपते ही भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और चारपाई पर हथकड़ी लगे बैठे भगत सिंह का प्रसिद्ध फोटो, जो आप सभी ने देखा है, इसी गिरफ्तारी के समय लिया गया था। इससे पहले भगत सिंह पंजाब लौटकर शचीन्द्रनाथ सन्याल की पुस्तक बंदी जीवन का पंजाबी अनुवाद छपवा चुके थे। आइए देखते हैं आगे भगत सिंह के शब्दों में। पहले कीर्ति पंजाबी पत्रिका थी, मैं काकोरी से संबंधित बहुत कुछ लिखा जा चुका है। आज हम काकोरी षड्यंत्र और उन वीरों के संबंध में कुछ लिखेंगे जिन्हें उस संबंध में कड़ी सजाएं मिली हैं। 9 अगस्त 1925 एक छोटा सा स्टेशन काकोरी, वहां से एक पैसेंजर ट्रेन चलती है। ये स्टेशन लखनऊ से लगभग 8 मील की दूरी पर है। ट्रेन लगभग 1.5-2 मील चली होगी कि सेकंड क्लास में बैठे हुए 3 नौजवान ने गाड़ी रोक ली और दूसरों ने मिलकर गाड़ी में जा रहा सरकारी खजाना लूट लिया। उन्होंने पहले ही जोर से आवाज देकर सभी यात्रियों को समझा दिया था कि वे डरे नहीं, क्योंकि उनका उद्देश्य यात्रियों को तंग करने का नहीं, सिर्फ सरकारी खजाना लूटने का है। खैर, वे गोलियां चलाते रहे और कोई भी आदमी गाड़ी से उतर पड़ा और गोली लग जाने से मर गया। चूंकि पहले ही बताया था, उसके बाद भी लोग डर की वजह से उतरे, उनमें से एक आदमी मर गया। सरकारी अधिकारी हार्टन CID इसकी जांच में लगा। उसे पहले से ही यकीन हो गया था कि यह डाका क्रांतिकारी जत्थे का काम है। उसने सभी संदिग्ध व्यक्तियों की छानबीन शुरू कर दी। इतने में क्रांतिकारी जत्थे की राज्य परिषद की एक बैठक मेरठ में होनी तय हुई। सरकार को इसके बारे में पता चल गया, वहाँ खूब छानबीन की गई। फिर सितंबर के अंत में हार्टन ने गिरफ्तारियों के वारंट जारी किए और 26 सितंबर को बहुत सी तलाशियां ली गईं और बहुत से व्यक्ति पकड़े गए, कुछ नहीं भी पकड़े गए। उनमें से एक थे श्री राजेंद्र लाहिड़ी, दक्षिणेश्वर बम केस में पकड़े गए और वहीं उन्हें 10 बरस कैद की गई। और श्री अशफाकुल्ला और सचिंद्र बख्शी बाद में पकड़े गए, जिन पर अलग मुकदमा चला। जज के फैसले से ये पता चलता है कि असहयोग आंदोलन दब जाने से देशभक्त युवकों का शांति से विश्वास उठ गया और उन्होंने युगांतर दल स्थापित कर लिया है। श्री जोगेशन चंद्र चट्टोपाध्याय बंगाल से इस दल का संगठन बनाने उत्तर प्रदेश आए और पक्का काम करके सितंबर 1924 में वापस लौट गए। उस समय बंगाल में आर्डिनेंस पास हो चुका था और आप लौटते ही हावलापुर पर पकड़ लिए गए। तलाशी लेने पर जोगेश चंद्र चट्टोपाध्याय जी की जेब से एक कागज मिला, जिस पर उत्तर प्रदेश की राज्य परिषद की किसी बैठक का और उत्तर प्रदेश में अपने दल के संगठन का हाल लिखा हुआ था। खैर, फिर काम चल पड़ा और काम चलाने की खातिर कई डकैतियां भी की गईं। जज के विचार में इस दल के नेता हैं श्री सचिंद्र नाथ सान्याल। श्री सचिंद्र नाथ सान्याल का नाम किससे छिपा है? आप ही बंदी जीवन जैसी प्रसिद्ध व शानदार पुस्तक के लेखक हैं, बनारस के निवासी हैं और 1915 के गदर आंदोलन में आपने खूब काम किया था। आप बनारस षड्यंत्र के नेता व श्री राज बिहारी जी का दायां हाथ थे। तब उम्र कैद हुई थी लेकिन 1920 में छूट गए थे। फिर आप अपने पिछले काम पर ही जुट गए और सन 1925 के शुरू में द रेवोल्यूशनरी पर्चा एक ही दिन में सारे हिंदुस्तान में आपके प्रयासों से ही बटा था। उसकी भाषा व अच्छे विचारों की अंग्रेजी अखबारों ने भी खूब तारीफ की थी। आप फरवरी में पकड़े गए आप पर उस संबंध में मुकदमा चलाया गया और आपको 2 साल कैद की सजा मिली। वहीं से आपको काकोरी के मुकदमे में घसीट लिया गया। आप बड़े जिंदा दिल हैं, कोर्ट में स्वयं खुश रहना और दूसरों को खुश रहना ही आपका काम था। आपने अपना मामला स्वयं लड़ा, आपने वकील के लिए मना कर दिया, जज आपको ही सबका गुरु कहता है। बंदी जीवन किताब का गुजराती और पंजाबी में अनुवाद हो चुका है। आप अंग्रेजी और बंगाली के उच्च कोटि के लेखक हैं। अब आपको 2 उम्र कैद हो गई हैं। आपके साथ आपका छोटा भाई भूपेंद्रनाथ सन्याल भी घसीट लिया गया है। वह करीब बीए में पढ़ता है, पकड़ा गया और उसे 5 साल की कैद हो गई है। श्री सचिंद्र के बाद अत्यंत प्रसिद्ध वीर श्री राम प्रसाद हैं। आप जैसा सुंदर मजबूत जवान खोजने से मिलना भी मुश्किल है। बहुत योग्य आदमी हैं, हिंदी के बड़ा लेखक हैं। आपके कैथराइन, बालशेविकों के काम, मन की लहर अनेक पुस्तकें लिखी। आप उर्दू के माने हुए शायर हैं। मेरे मुताबिक आपकी उम्र लगभग 28 बरस की है। पहले 1919 में मैनपुरी षड्यंत्र में आपके वारंट निकले और आपके गुरु श्री गेंदालाल जी आदि पकड़े गए, लेकिन आप नेपाल की ओर चले गए और वहाँ बड़ी मुश्किलें सहन कर गुजारा करते रहे। पूरा दिन हल चलाना, कुदाल चलाना, मेहनत कश मशक्कत करना और रात में सिर्फ 1.5 आना पाना, जिससे पेट भर रोटी भी नहीं खा सकते थे। कई बार तो घास तक खाई है आपने, लेकिन मजा ये फिर भी बैठकर कविता लिखना और भारत माँ की याद और प्रेम में आंसू बहाने और गीत गाने, ऐसे नौजवान कहाँ से मिल सकते हैं। आप युद्ध विद्या में बड़े कुशल हैं और आज उन्हें फांसी का दंड मिलने का कारण भी बहुत तक यही है। इस वीर को फांसी का दंड मिला और आप हंस दिए। ऐसा निर्भीक वीर, ऐसा सुंदर जवान, ऐसा योग और उच्च कोटि का लेखक और निर्भय योद्धा आज भारत में मिलना मुश्किल है। अब तीसरे वीर की बात करते हैं, काकोरी के रजींद्रनाथ लाहिड़ी, 24 साल का अत्यंत सुंदर जवान, एमए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का विद्यार्थी। जज कहता है ये युगांतर दल का एक मजबूत स्तंभ है। आप गाड़ी रोकने वाले उन 3 लोगों में से थे। बाहर से था कमजोर सूखा साखा, कलकत्ते के पास दक्षिणेश्वर बम फैक्ट्री में पकड़ा गया, वहीं 10 साल कैद हुई, खुशी में मोटा होने लगा। काकोरी के मुकदमे तो शरीर खूब भर गया था और अब फांसी की सजा हो गई है। वीर रोशन सिंह को भी फांसी की सजा हुई है। आप पहले पुलिस की मदद करते थे और बहुत से डकैत आपने पकड़वाए थे, आप भी फंस गए। पुलिस को डकैत तो नहीं है, जज भी कहता है ये नौजवान सच्चे देश सेवक थे। अच्छा, इस वीर को भी बार बार नमस्कार। इसके बाद श्री मनमथ नाथ गुप्त की बारी है। आप काशी विद्यापीठ के बीए के विद्यार्थी थे, 18 बरस की उम्र है। बंगाली, गुजराती, मराठी, उड़िया, हिंदी, अंग्रेजी और फ्रेंच आदि अनेक भाषाएं आपने सीख ली थी। जज ने आपको भी डकैतियों में शामिल कर 14 साल की सख्त सजा दी है। आप बड़े निर्भय हैं, ये सजा सुनकर आप भी हंस दिए। आजकल जेल में भूख हड़ताल किए बैठे हैं। आपसे गैर सरकारी सदस्य ने जेल में आकर पूछा खाना क्यों नहीं खाते हैं, आपने उत्तर दिया हम मनुष्य हैं, हमारे साथ मनुष्यों जैसा व्यवहार होना चाहिए। मैं नहीं समझता इस पशुओं जैसे व्यवहार को सहन कर मैं 14 साल जी सकूंगा। तिल तिल कर मरने से एक बार मर जाना अच्छा है। आप पहले असहयोग में जेल भी जा चुके हैं। अब जिस नौजवान का जिक्र होगा उसे यदि हम महापुरुष कह दें तो कुछ झूठा ना होगा। वह वीर श्री जोगेश नाथ चटर्जी हैं। आप कोमिल्ला या ढाका के रहने वाले हैं। बीए में फिलॉसफी के विद्यार्थी थे। प्रोफेसर आप पर बहुत खुश थे और कहते थे ये लड़का बड़ा होनहार है। लेकिन आपने कॉलेज तो क्या पूरी दुनिया की फिलॉसफी पर लात मार दी और सब कुछ छोड़कर युगांतर दल में जा मिले। आपको डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के अनुसार गिरफ्तार किया गया और अकथनीय व असहनीय कष्ट दिए गए। एक दिन आपके सिर पर पखाना डाल दिया गया और 4 दिन तक कोठरी में बंद रखा गया। मुंह धोने तक के लिए पानी नहीं दिया गया था आपको और बुरी तरह मार मार कर पूरा बदन जख्मी कर दिया गया। लेकिन आपके पास चुप से अधिक क्या रखा था। 1920 में छूटे तो एक मामूली कार्यकर्ता की तरह कांग्रेस में काम करते रहे। घर से गरीब हैं लेकिन अपना घर तबाह करके भी दुनिया की सेवा होती है। आप 1923 में यूपी आए और फिर युगांतर दल की नींव रखी। 1924 में बंगाल लौट गए और पकड़े गए। पहले आपको ऑर्डिनेंस के तहत पकड़ा था, फिर यहाँ काकोरी लाया गया। आपको 10 बरस कैद हुई है। बेहद खूबसूरत नौजवान है, जज ने बहुत तारीफ की है आपकी। श्री गोविंद चरणकार उर्फ डीएन चौधरी लखनऊ से पकड़े गए थे। अब बहुत पुराने क्रांतिकारी हैं। 1918 या 1919 में ढाका में पुलिस आपको पकड़ने आई, आपने गोलियों का जवाब गोलियों से दिया और गोलियों में से लड़ते लड़ते भाग निकले, लेकिन गोलियां खत्म हो चुकी थी और आप घायल हो गए थे। पकड़े गए, काला पानी मिला। 1922 में बहुत बीमार हो गए थे, तब छोड़े गए। 1925 में फिर पकड़ लिए गए और अब 10 साल की कैद हो गई है। अब श्री सुरेश चंद्र भट्टाचार्य संबंधी कुछ लिखेंगे। आप भी बनारस के रहने वाले थे, बनारस षड्यंत्र के समय आपकी उम्र 16 बरस थी। पकड़े गए लेकिन कुछ प्रमाणित ना होने से छूट गए और फिर नज़र बंद कर बुंदेलखंड में रखे गए। आप हिंदी के बड़े प्रसिद्ध लेखक हैं, कानपुर के प्रताप जैसे प्रसिद्ध अखबार के सहायक संपादक थे। आप बनारस में पकड़े गए और अब आपको 7 साल की कैद हुई है। आप बहुत सुंदर गाते हैं, जेल में आप योगाभ्यास करते थे। श्री राजकुमार कानपुर के रहने वाले हैं, आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बीए में पढ़ाते थे। पकड़े गए, आपके कमरे से 2 राइफलें निकली। बहुत सुंदर गाने वाले और देखने में आप काफ़ी सुंदर हैं, जोशीले बहुत है। श्री दामोदर स्वरूप जब बहुत बीमार होने पे भी कोर्ट में बुलाए गए तो आपको जोश आ गया और आपने जज को खूब सुनाई। जज ने कहा, फैसले के समय तुम्हें इसका मजा चखाया जाएगा। वीर युवक को 10 साल की सजा हो गई, जीवन एक तरह से तबाह हो गया, लेकिन आप हंस दिए। धन्य है ये वीर और इन्हें जन्म देने वाली वीर माताएं। श्री विष्णु शरण दुबलिश मेरठ के रहने वाले हैं, वैश्य अनाथालय के अधीक्षक थे। बीए में असहयोग कर दिया गया था और मेरठ को उन्होंने दूसरा बारदोली बना दिया था। सिविल नफरमानी के लिए तैयार हो गए थे, बड़े सुंदर वक्ता थे। आपके घर युगांतरकारियों की बैठक हुई थी, आपको 7 साल की सजा हो गई है। श्री रामदुलारे को भी 7 साल की सजा हुई है। आप कानपुर के निवासी थे, स्काउट मास्टर, कांग्रेस के जोशीले सेवक थे। 6 अप्रैल को फैसला सुनाया गया, उस दिन सभी वीर गाते आए थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सजाएं लापरवाही से सुनी और हंस दिए। इसके बाद दुख की घड़ी आ गई। जिन वीरों ने एक साथ समुद्र में कश्तियां डाली थीं, उनके ही अलग होने का पल आ गया। क्रांतिकारी लोगों में जो अगाध और गंभीर प्रेम होता है, उसे साधारण दुनियादार आदमी अनुभव नहीं कर सकते। श्री राजबिहारी के इस वाक्य का अर्थ भी हम लोग नहीं समझ सकते। जिन लोगों ने सिर रख तली प्रेम की गली, सिर रख तली प्रेम की गली में पैर रख दिया हो, उनकी महिमा को हमारे जैसे निकृष्ट आदमी क्या समझ सकते हैं। उनका परस्पर प्रेम कितना गहन होता है, उसे हम सपने में भी नहीं जान सकते। 1.5 साल से अपने जीवन के अंधकार में, भविष्य के इंतजार में मिलकर बैठे थे, वह पल आया। 3 को फांसी, 1 को उम्र कैद, 1 को 14 बरस कैद, 4 को 10 बरस कैद और बाकियों को 5 से 10 साल की सख्त कैद सुनाकर जज उन्हें उपदेश देने लगा। आप सच्चे सेवक और त्यागी हो, लेकिन गलत रास्ते पर चले गए हो। गरीब भारत में यही सच्चे देशभक्तों का हाल होता है। जज उन्हें अपने कामों पर पुनर्विचार करने की बात कहे चलता बना। और फिर क्या हुआ, क्या पूछते हैं। जुदाई के पल बड़े बुरे होते हैं। जिन्हें फांसी की सजा मिल गई, जिन्हें उम्र भर के लिए जेल में बंद कर दिया गया, उनके दिलों का हाल हम नहीं समझ सकते। कदम कदम पर रोने वाले हिंदुस्तानी, यूं ही थर थर कांपने लग जाने वाले कायर हिंदुस्तानी उन्हें क्या समझ सकते हैं। छोटों ने बड़ों के पैर पर झुककर नमस्कार किया, उन्होंने छोटों को आशीर्वाद दिया, जोर से गले मिले और आह भरकर रह गए, भेज दिए गए। जाते हुए श्री राम प्रसाद जी ने बड़े दर्दनाक लहजे में कहा, दरो दीवार पे हसरत से नजर करते हैं, दरो दीवार पे हसरत से नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं। यह कहकर वह लंबी बड़ी दूरी की यात्रा पर चले गए। दरवाजे से निकलते समय उस अंधकार के बड़े भारी रैंकन थिएटर हॉल की भयावह चुप्पी को एक आह भरकर तोड़ते हुए उन्होंने फिर कहा, हाय हम जिस पर भी तैयार थे मर जाने को, हाय हम जिस पर भी तैयार थे मर जाने को, जीते जी हमसे छुड़ाया उसी कशाने को। हम लोग एक आह भरकर समझ लेते हैं कि हमारा फर्ज पूरा हो गया है, हमें आग नहीं लग उठती, हम तड़फ नहीं उठते, हम इतने मुर्दा हो चुके हैं, आज वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, तड़फ रहे हैं और हम चुपचाप सब तमाशा देख रहे हैं। ईश्वर उन्हें बल व शक्ति दे, वे वीरता से अपने दिन पूरे करें और वीरों के बलिदान ईश्वर रंग जरूर लाए। वंदे मातरम। आगे और कथाएं सुनाऊंगा आपको काकोरी के और वीरों की कथाएं, जल्दी आपसे मिलता हूं। नमस्कार।